يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد کی کثرت سے، تو اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیاں پہنچانے میں. بل لا یشعرون، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں. مکہ والے بھی آ کے اللہ کے نبی کو کہتے تھے، دیکھو اگر تمہارا رب ہم سے ناراض ہے تو یہ مال اور بیٹے کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھو ہم بھی تو پنپ رہے ہیں نا، ہم تو اتنا کھا کھا کے پی پی کے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، پھر بتاؤ اگر رب ناراض ہے تو پھر ہمیں اتنا کچھ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے بات کسی انسان کے لیے کہ غلطیاں کرنے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے دے. یاد رکھیے، غلط کام کرنے کے باوجود بظاہر دنیا میں عزت مال شہرت بڑھتا جائے تو بندہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. بندہ غلط ہو، دنیا کی چوٹ پڑے تو ایک دم لاشعوری طور پہ بولتا ہے میں کوئی غلطی کر کے آیا ہوں، اور بندہ غلط ہو اور دنیا کی عزت ملے تو خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی تفرقہ بازی، ان کی کم علمی میں ڈوبنے کی وجہ سے مزید حق کو نہیں دیکھ پا رہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. سورت کہف کے آیت 36 میں ہم نے باغ والوں کے قصے میں بھی یہی بات پڑھی تھی نا، کیا کہا تھا اس شخص نے کہ وَلَئِ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، اگر بالفرض میں چلا بھی گیا رب کی طرف میں اس دنیا کے باغ سے اچھا پالوں گا. پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جس کو دنیا میں بہت کچھ مل گیا نا اس کو آخرت میں بھی ملے گا. ہم کہتے ہیں لو اس پہ کس نے ہاتھ ڈالنا ہے، ان کے تو ہاتھ بڑے لمبے ہیں. نہیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی طاقت ان سے بھی بڑی ہے. دنیا میں تو واقعی حقیقت ہے کہ بڑے لوگ گناہ کر کے بھی بچ جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ بیچارے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پھنس جاتے ہیں، لیکن مالک یوم الدین کے پاس ایسی بے انصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عموماً آپ دیکھیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اچھا کام ہونا کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی ہے جو یہ کام آ گیا، کسی نعمت کو پاتے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں، بڑا سا گھر ہے ہاذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. یہی غلط فہمی کل کفار مکہ کو تھی، کہتے تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبہ کے مجاور ہیں، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، نحن اکثر اموالاً واولاداً، ہمارے مال بیٹے اتنے، پھر نبوت تمہاری طرف کیسے چلی گئی؟ ہم اتنا کام کریں اور اللہ نبی کسی اور کے پاس بھیج دے، یہ تو اچھا نہیں لگتا. اور یہ تھا ان کا کبر جس نے ان کو نبی کی بات سننے سے روکا ہوا تھا. انتہائی خطرناک رویہ. میں اور آپ اپنے لیے ضرور نصیحت کی غذا لیں کہ کبھی بھی ایسا کوئی تکبر اپنے دل میں نہیں لانا کہ جو بندے کو ہدایت کے راستے پہ چلتے چلتے یک دم روک دے. ہینڈ بریک جو ہوتی ہے نا گاڑیوں میں ہوتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ نیکی کی طرف آنے والوں کے بھی بعض دفعہ ہینڈ بریکس ہی لگتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈلی رکنا پڑتا ہے یا روکنا پڑتا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کہ ہر لمحے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر لمحے انسان سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہوں. کہ اللہ نے اگر کچھ دے دیا ہے دنیا میں مال اولاد تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ نہیں. نساری اللہم فی الخیرات، یہ اصل میں کوسچن ہے، سوالیہ انداز ہے. اچھا جی، تمہارا خیال ہے مال اور بیٹے بہت مل گئے تو تم سے ہم بہت خوش ہیں، خیر ملی؟ نہیں نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ تمہیں شعور نہیں. اس کے برعکس اب یہاں سے ایک نیا گروہ شروع ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت مومنون کے ابتدا میں جو 10 آیتیں ہم نے پڑھی سچے مومنوں کی صفات تھیں اس میں، اب یہاں اسی لسٹ کے اندر الذین اور والذین کی لسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا اگر سچے مومن بنتے ہو، دین کی روح چاہتے ہو، تمہیں حقیقت میں دیکھنا ہے کہ اتنی غلط حرکتوں کے باوجود تمہیں اتنی خیر کیوں ملی ہوئی ہے، اللہ نے تمہاری باغ دوڑ اتنی کیوں کھلی چھوڑی ہوئی ہے، تو آؤ دیکھو کہ اللہ تمہیں آزمار ہے. اللہ نے تمہیں اتنا کچھ جو دے دیا، تمہاری نافرمانیوں کے باوجود گھر بھی اچھے، سواریاں بھی اچھیں، تمہارے لیے آسائش کے اور آرائش کے سارے سامان موجود ہیں، اس کے باوجود دن بدن تمہارے دامن پہ گناہوں کے موتی زیادہ ہی لگتے جا رہے ہیں. تم اپنے آپ کو سجاتے جا رہے ہو غلط کاموں کے ساتھ، تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیکیوں کے باوجود دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے، وہ گناہ گاروں کو اور زیادہ دیتا ہے. دیکھیے دنیا میں انسانوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیتے ہیں. अल्लाह ताला की सुन्नत इससे ऑपोजिट है। अल्लाह बाज़ औक़ात जिससे ज़्यादा खुश होता है उसको ज़्यादा देता है, मगर क्या आजमाइशें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें। इंसानों में आप समझें दो तरह के इंसान होते हैं, आपको अपना पता होगा, मुझे अपना पता है। कुछ लोग होते हैं जब उसके साथ कोई अच्छा कर रहा होता है ना तो उनका दिल करता है कि हम इनके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पता नहीं वो ठीक होते हैं कि गलत, लेकिन उनका हाल क्या है कि जो उनसे ज़्यादा बुरा करता है ना उसके साथ अच्छा काम करने को दिल चाहता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत का एक हिस्सा होता है कि बुरे के ऊपर अच्छा करो ताकि वो तुम्हारी अच्छाई से पलट के आ जाए। मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर किसी नेक इंसान पर अल्लाह ताला इनामात के दरवाजे खोल दे, उसके बाद उसके साथ कोई नेमत आ जाए और उस नेमत को अल्लाह ताला उसके लिए आजमाइश बना दे, यानी आप सोचिए कि कोई नेक शख्स था पहले दर्जे पे, फिर उसके बाद नेमतें खुल गई, बहुत कुछ उसको अल्लाह ताला ने दे दिया, तो हो सकता है वो नेमतें उसके लिए दूसरे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का जरिया बन जाए। कैसे कि देखो अल्लाह के रास्ते में है ना तो अल्लाह ने हमारा हाल अच्छा रखा हुआ है, और ये पसंदीदा बात है। फम बि नेमति रब्बिका फहद्दिस, रब की नेमतें। हाँ, और यकीन करें कि ये चीज़ दिखाना भी एक जिहाद है। लोगों को ऐसा दीन करके दिखाइए, लोगों को ऐसी खूबसूरत नेकियां करके दिखाइए कि लोग भी ग्लैमराइज होके वो नेकी करने चाहें, और दुआ मांगा करें कि अल्लाह दीन की वजह से हमारा हाल ऐसा ना बनाना कि लोग नेकी करना छोड़ दें, कि हाय नेकियां करने वालों का ये हाल हो जाता है। अच्छा बना हमारा हाल, लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि जब नाफरमान को अल्लाह ताला बुरे कामों के बावजूद कोई ज़्यादा नेमत दे देता है ना तो वो नेमत उसके लिए इस्तदराज बन जाती है, दर्जा दर्जा, लम्हा लम्हा, आहिस्ता आहिस्ता खुद भी गुमराहियों की पस्तियों में गिरता है और अपने साथ उनको भी डाल देता है जो कि उसकी तरफ आंखें लगाए होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच्चे बंदे तो वो हैं कि इन्नल्लज़ीनहुम मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक वो लोग जो अपने रब की खशियत से डरते ही रहते हैं। दो लफ्ज़ आए हैं इधर, एक है खशियत और एक है मुशफिकून, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बता के ग्रामर की बात, फिर जहाँ तक आयतें जाती हैं इनकी को एक हदीस भी नोट करवाती हूँ इसके बारे में। खशियत कहते हैं वो खौफ जो किसी की बड़ाई को देखकर इंसान के दिल पर है, जबकि मुशफिकून ऐसा डर जिसमें मोहब्बत भी शामिल हो। आप कह सकते हैं कि खुशी और अंदेशों के मिले जुले जज्बात मुशफिक हैं, मुशफिकून होना है उस बंदे का। शफक का लफ्ज़ सुनते हैं ना, क्या होता है, दिन जा रहा है, रात आ रही है और आसमान पे सुर्खी छती है ना, कहते हैं शफक की लाली, सफेदी और स्याही का इम्तिजाज, यही है शफक। प्यार मोहब्बत भी अल्लाह से बहुत है, लेकिन साथ साथ उसकी नाराज़गी का डर भी है। यानी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ मामला करते हुए अपने आप को बिल्कुल बेलगाम नहीं छोड़ देते, बल्कि मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, वो खौफ से डरते ही रहते हैं। वल्लज़ीनहुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीनहुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। वल्लज़ीन यूतूना मा आतौ वकुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जो वो देते हैं जो कुछ भी देते हैं इस हाल में कि इनके दिल डर रहे हैं, क्या इस ख्याल से कि वो एक दिन अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। क्या अंजाम ऐसे लोगों का, उलाइका युसारिऊन फिल खैराति वहुम लहा साबिकून, यही लोग जल्दी करते हैं भलाइयाँ करने में और वो भलाइयों की तरफ सबकत ले जाने वाले हैं। इन आयात के बारे में रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या ये डरने वाले चोर और डाकू लोग हैं, ये गुनाहगार लोग हैं कि जो गुनाह भी करते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से डरने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, ए सिद्दीक की बेटी, यहाँ पहले नोट कीजिए, बीवी को उसके बाप के नाम से पुकारना कितना प्यारा अंदाज है, ससुर के लिए ऐसे लफ्ज़ बोलना कितने दामादों के नसीब में है। क्योंकि बेटियों को हमेशा अच्छा लगता है कि उनके बाप के नाम से पुकारे। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम सिर्फ हमें नमाज रोज़ा ही नहीं सिखाने आए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, इसके बावजूद डरते रहते हैं कि शायद इनके ये आमाल बारगाहे इलाही में मंजूर ना हो। और उलाइक का युसारे ऊ नफिल खैरात, यही वो लोग हैं जो नेकियों में तेजी करने वाले लोग हैं। अब देखिए कि बहुत ही खूबसूरत आयते हैं। पहले कुफार के नजरियात और उनके हालात, उनकी खुशफहमियों का तस्करा हुआ कि किस तरह अपनी गुमराहियों पर ही नाज है, किस तरह अल्लाह ताला की नेमतों को अल्लाह ताला का इनाम समझकर अपनी सच्चाई का यकीन कर बैठे हैं, किस तरह अहले ईमान की मुशक्कतों, तकलीफ़ों, उनकी मुसीबतों को इस बात की दलील ठहरा रहे हैं कि ये लोग रास्ते ही भटके हुए हैं, तभी तो ठोकरे खा रहे हैं, अल्लाह ने तभी तो इनको पकड़ा हुआ है। कुफार के तस्करे के बाद आप देखिए कि अहले हक की खसूसियात का तस्कर है ना, कि ये लोग तो सरापे अज़्ज़ो इन्नियाज़ हैं, इतात में पड़े हुए हैं, इतना कुछ करके भी हर लम्हे अपनी कोताहियों का एहसास है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई का जब ख्याल आता है तो लरज जाते हैं। अल्लाह ताला का जो हुक्म इसका नबी इनको सुनाता है तो बिला चूं चिरा उसको मान लेते हैं, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। जो माल दौलत अल्लाह उनको देता है वो अल्लाह के बंदों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ आप देखिए कि वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, याता ईता वही है जो हम उतु ज़कात में पढ़ते हैं ना। अंदाज कितना खूबसूरत बनता है, ऐसे लगता है कि जो भी वो देते हैं, बताया नहीं क्या क्या देते हैं, ऐसे लगता है कि अल्लाह सुबहाना तआला उनके दिए हुए की खबर भी नहीं देना चाहते किसी को। ये ऐसे ही होता है जैसे कोई बंदा कुछ देता है और साथ ही कहता है कि दूसरों को ना बताइएगा। अब कोई शख्स देख रहा है कि आपको कोई दे रहा था, कुछ दे रहा था, बाद में कोई पूछता है अच्छा ये क्या दे रहे थे, क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे बस दे दिया ना जो दे दिया। यानी इतना प्यारा अंदाज है, इखलास की हद दिखती है कि जो भी वो देते हैं, एक तो ये मानी है कि जब उन्होंने छुपाया है तो हम क्यों बताएं, और दूसरा इससे एक और भी मफहूम निकलता है, और वो क्या कि शायद देने वाले का देना था ही इतना थोड़ा कि दूसरा समझे हाँ ये दिया, लेकिन अल्लाह को पता है कि यू तू नमा आतो कि दिया तो है लेकिन किस दिल से दिया है। वक़ुलूबुहुम वजीलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, के माल की कसरत बात नहीं है, देखना ये कि कब दिया है और किस दिल से दिया है और क्या दिया है। आप देखिए एक सच्चे मोमिन का खूबसूरत नक्शा हमारे सामने आता है कि उसकी ज़िंदगी में अंदेशे भी होते हैं और मुतमईन भी होता है वो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात याद आ गई, कहा करते थे कि अगर क़यामत के दिन एक पुकार लगे कि आज सारे लोग बख्शे गए बस एक को नहीं मैंने बख्शा, तो मुझे गम लग जाता है कि उमर वो तुम हो, हम हो तो क्या कहें, कहना हाँ फुला मुझे पहले ही शक था इन्होंने नहीं बख्शे जाना, इनके तो करतूत ही ऐसे हैं, कभी हम में से कोई सोचता वो मैं हूँ, और मैंने तो अब कुरान का कोर्स भी कर लिया, मैं कैसे हो सकती हूँ, लो मैं होंगी, क्या समझते हैं अब क्या बात करते हैं, अब मैं आग में जाऊंगी आखिर, मैं रोज 4-5 घंटे आके पढ़ती पढ़ाती हूँ, मैं तो इतनी नेकियां कर रही हूँ, मैंने कहा होना है। नहीं, उमर कह रहे हैं कि जिनके बारे में आता है कि अगर अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, उनका हाल ये था कि उनके दिल रब से डरते थे, खौफ खाते थे वो। ऐसे लोग अल्लाह की आयतों पे ईमान लाते हैं। आज हम भी पढ़ते हैं, ईमान कितना आता है इसको सोचिए, यकीन करें कि ये कुरान पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। टिप्स पे गिन लें आप, उंगलियों पे अपने पारे गिन लें आप, अपने कोर्स के दिन आप गिन लें टिप्स पे, इतने थोड़े दिन और इतने थोड़े, सिर्फ 12 सुपारे रह गए आपके, कभी आपने सोचा? और 2 और गुजर जाएंगे तो 2/3 कुरान आपका पूरा, ये सीना है जो आज 2/3 कुरान को पा चुका, इतना पहाड़ हिल जाए इस कुरान की एक आयत को सुनने और पढ़ने से, हमारे दिल अगर अगर नहीं डरे, अभी भी अगर हम दुखी दुखी गम गम उखड़े उखड़े, हमारे अंदर अभी वो रंग नहीं अगर दिख रहा जो वाकई अल्लाह के बंदों का रंग होता है, वो इत्मीनान का रंग होता है, वो घबराहट का रंग नहीं होता, वो दुखी और मजबूरी का रंग नहीं होता, वो कोई अपने आप के ऊपर रहम खाते हुए इंसान नहीं होते, तो याद रखे फिर कब होगा? अगर अभी भी हम नहीं इसको समझे, अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीना यूतूना मा आतव, जो भी देते हैं बस देते हैं, लेकिन देने के वह दिल बड़े डरे हुए हैं। वो वक्त देते हैं, वो माल देते हैं, वो एफर्ट्स देते हैं, वो नींद देते हैं, वो अपनी चाल देते हैं, अपने कदम देते हैं, क्या क्या नहीं बंदा अल्लाह के रास्ते में पेश करता कि अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। ये थोड़ी कहते हैं दे दिए थे पहले, अब बार बार थोड़ी देनी है अल्लाह आपको चीज़ें। नहीं, वो तो हर साल देते हैं एक साल के बाद ज़कात की सूरत में, कि अल्लाह पिछला शायद नहीं कबूल हुआ होगा, अब ले लें। अच्छा अल्लाह वो नहीं था, ये कर लें। देखिए हर नमाज इसी चीज़ की दलील नहीं है कि अल्लाह पिछली नमाज जो पढ़ी थी वो ठीक नहीं थी, अब एक और पढ़ के दिखाती हूँ। और बड़े खुशू और खुदू से वो नमाज़ पढ़ के बंदा सलाम फेरता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और साथ ही क्या बोलता है, देखा ना पढ़ ली ना और एक नमाज आ गई ना और नेकियां। नहीं, क्या बोलता है, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 कि अल्लाह तू तो सबसे बड़ा है लेकिन मैं बड़ी गुनाहगार हूँ। क्या भाई नमाज पढ़ी है, कोई फिल्म देख के थोड़ी उठे हैं कि अब इस्तग़फार करें। ये इस्तग़फार किस बात की दलील है कि वक़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि अल्लाह ये नमाज थी, शर्म आ रही है इस नमाज को देखकर, ना दिल अंदर था, ना दिमाग अंदर था, ना आंखें अंदर थी, मैं तो पता नहीं क्या कुछ सोचती रह गई। हाँ, करेगा वो डरेगा वही तरेगा, लिख ले, करके जो डरा वो तर जाएगा, और जो करके खुशफहमियों का शिकार हो गया वो डूब जाएगा, क्योंकि अल्लाह उससे तौफीक छीन लेगा। करने के लिए करना क्या है, उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, भाग भाग के नेकियां करते हैं ये लोग। लोगों की दौड़ धूप है मालो दौलत समेटने में, कि किसी से पीछे ना रह जाएं, हम बोली दे दें, हम पहल कर लें, लेकिन अल्लाह के ये बंदे सुबह शाम इसी फिक्र में घुले हुए हैं कि कोई आमाले सालेह में इनसे आगे ना बढ़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लम के पास कुछ लोग आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी, कुछ लोगों को तो आपने बड़ा माल दिया है, और वो नमाजें रोज़े पढ़ते हैं जो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा माल की वजह से वो सदका खैरात करते हैं और उनके दर्जे बढ़ गए। ज़रा सोचिए अल्लाह के नबी के दौर के मालदार भी कैसे थे, और गरीब गुरबा ये नहीं कह रहे कि अल्लाह तूने उनको क्यों दिया इतना, गम क्या है कि उनको ज़्यादा दिए तो वो तेरे रास्ते में ज़्यादा दे रहे हैं। रश किस पे नहीं है कि माल ज़्यादा, रश किस पे है कि वो माल अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करें, कहा अच्छा आओ मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ, ये कलिमात पढ़ लो नमाज के बाद, सुभानल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, तो इसको कुछ खास तादाद में पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी उनके बराबर कर देगा। खुश हो गए, कहा ठीक है। ये नहीं कहा नहीं हमें डॉलर ही चाहिए, हमें डॉलर्स दें वो खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में, फिर अजर मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ पास नहीं होती ना हम समझते हैं बस वही देने का सवाब है, पास पड़ी हो वो हमें नज़र नहीं आती। दो चार दिन कुछ दिन गुजरे, फिर वापस आ गए, भाई अब क्या मसला है, कहा अल्लाह के नबी उस वजीफे का अमीरों को भी पता चल गया। देखिए वो अमीर भी कैसे थे, यु सारे होना फिल खैरात, वो एक नेकी करके ही नहीं कहा चलो दूसरों से तो अच्छे हैं ना, कर ली है ना नेकी और क्या, वो ये देखते थे कि अच्छा इन्होंने ये कर ली तो हम क्यों ना करें। अब ज़रा सोचें कि एक बंदा जो बेचारा वैसे ही बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज वाला है, उसके पास वक्त भी ज़्यादा होगा, वो वज़ाइफ कर सकता है, वो अल्लाह की इबादत भी ज़्यादा कर सकता है, जबकि जिसके पास माल दौलत ज़्यादा होता है उसकी यकीनन जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, इसके बावजूद उनके पास इतना वक्त निकला कि उन्होंने भी वो वजीफा कर लिया। कहा अल्लाह के नबी अब वो फिर हमसे आगे बढ़ गए, तो आपने क्या कहा कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है फिर वो जिसको दे दे। ज़रा यहाँ से आप दौरे नबी के अमीर और गरीब लोगों की सोच देखिए, ना अमीर को उसकी इमारत ने नुकसान दिया और ना गरीब को उसकी गुरबत ने नुकसान दिया। तो लिहाजा ना इमारत बुरी है ना गुरबत बुरी है, लेकिन वो इमारत बुरी है जो बंदे को सिर्फ अपने ही नफ़े नुकसान के गिर्द घुमाती रहे, अपने आप को ही पाँव पसार के बड़े से बड़े कदम उठाने पे मजबूर करती जाए, अपना ही पेट ना भरे। और वो गुरबत बड़ी बुरी है जिसमें हर वक्त शिकवे और आहें और दर्दमंदी निकले जुबान से, दिल दुखा ही रहे। नहीं है जिस हाल में उलाइका युसारिऊन ना फिल खैरात, कोई हल्के बदन का शरीरे बदन का वो भी भागेगा, वो तेज चला जाएगा ऑफकोर्स भागेगा, एक भारी बदन का वो भी भागेगा लेकिन वो पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि गुरबत कोशिश युसारे ऊन। इसीलिए अगली आयत में फरमाया ना कि वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम तकलीफ़ नहीं देते किसी नफ्स को मगर उसकी वसत के मुताबिक। अब ये जो आखिरी हिस्सा है ना आयत का, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखिए लफ्ज़ है युसारे ऊन फिल खैरात, जो नेकियों में भागते हैं, वहुम लहा साबिकून, वही आगे निकलेंगे। चलिए थोड़ी सी खेल की बातें करते हैं। कभी कोई मैच देखा होगा आपने, अमूमन आप देखिए कि कोई गेम होती है, मैच मेरा हले ज़्यादा हमारे कल्चर में मारूफ लफ्ज़ है, मैच देखते हैं। कितने लोग होते हैं? नंबर एक खिलाड़ी, वो क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। दूसरी एक टीम होती है तबसरा नवीस, कमेंटेटर्स जो बैठे हुए टीवी की स्क्रीन पे बोलते हैं वो उसने छक्का मारा, उसने ये किया, उसने बॉल तोड़ दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, कमेंट्री करते हैं। तीसरे कौन होते हैं? शायकीन बैठ रहे हैं। अब आप लिखें तीनों चीज़ें, खिलाड़ी खेल रहे, बैठ के कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं, और तीसरे जो तमाशबीन है वो तमाशा देख रहे हैं। एंड ऑफ द गेम जीतता कौन है, हारता कौन है? क्या कमेंटेटर जीतेगा, हारेगा? तमाशबीन जो आए हुए थे वो जीतेंगे, हारेंगे? तो ये है उलाइका युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून। बड़ा गहरा नुक्ता है अब जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इधर याद रखे, जो खेलेगा ना वही आगे जाएगा। जो बैठ के बातें करते रहते हैं ना, क्या हो गया, लोगों को इसकी खुशी नहीं होती कि कुरान से जुड़े हो? आप कुरान पे आए ना, कितने कम लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि कुरान पढ़ने लग गई हो, माशाल्लाह तुम्हें अब नमाजों में मज़ा आएगा, अब तुम्हारे रोज़े अच्छे होंगे। कहते कौन सी जमात ज्वाइन की है, किसके पास गए हो, क्या गिरोह है? लोग इस बात के कि युसारिऊन ना फिल खैरात, अब हम भाग रहे हैं, हमारे हमें देखो तो हम कितने अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, हमारे नामे अमाल में इतनी नेकियाँ आ रही हैं, फिक्र क्या लग जाती है? कमेंट्री करें, कमेंटेटर्स कौन है जो आपके हमारे या जो भी जिस नेकी में जा रहे हैं पढ़ने के अलावा, हर जगह जो बैठ के सिर्फ बातें ही करते हैं ना, कमेंट्स पासिंग, शादियों में राउंड टेबल के इर्द गिर्द खाने के इंतज़ार में, बर्थडेज़ में बर्थडे का केक कटने में देर है, चलो आओ ज़रा थोड़ी कमेंट्री कर लें, हालात देखें। और तीसरा तबका जो सोसाइटी का होता है ना, वो तमाशा देख रहा होता है, खामोश ऑब्जर्वर। अब आप यहाँ देखें कि जो चलेगा वही जीतेगा ना। आप चल रहे हैं, किसी के 25 पर 25 नंबर आते हैं टेस्ट में, किसी के हो सकता है 25 में से सिर्फ 10 ही आते हों, तो क्या वो हार गया? अब यहाँ एक और एंगल देखिए, दुनिया में 10 लोगों में भी मुकाबला होता है ना तो जीतता एंड पे एक है। आप सोचें कोई भी रेस है, मैराथन रेस है या दौड़ का मुकाबला है, आखिर में एक ने जीतना है, या बहुत होता है कुछ जगह तो तीन, एक फर्स्ट पे विक्ट्री स्टैंड, एक दूसरे पे और एक उससे भी तीसरे पे। अल्लाह सुबहाना ताला के रास्ते में भागने की एक चीज़ जो दुनिया की भाग दौड़ से फ़र्क है ना, वो क्या है कि इस रास्ते में हर चलने वाला फर्स्ट आता है, क्योंकि वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी के 25 दूसरे के 10 नंबरों के बराबर होते हैं, और वल्ला ही 5 के भी बराबर होंगे, और वल्ला ही उसका एक भी बहुत होगा दूसरे के 25 के मुकाबले में। और किसी का सिर्फ आके बैठ जाना, टेस्ट का कागज़ ही पकड़ लेना या ना पकड़ना, सिर्फ सुनना ही दूसरे के 25 बाय 25 के बराबर होगा। क्यों? उसने पैदा किया है। फिर जिसको लिखना ही नहीं आता वो क्या लिखेगा? अल्लाह के बंदो, वो मुझे तो वो बात याद आ गई ना कि कोई शख्स अपनी आंखें चेक कराने गया, नज़र चेक कराने गया, उसने दिखाया उसको सामने ABC का चार्ट, पढ़ सकते? उसने कहा नहीं पढ़ सकता। फिर और लेंस लगाया, फिर उसको और करीब किया, और करीब किया, नंबर बढ़ाता जा रहा, क्या पढ़ सकते हो? कहा नहीं पढ़ सकता। कहा है तुम्हारी इतनी नज़र कमज़ोर हो गई है? कहा नहीं, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं। यकीन करें अल्लाह को हमारा सारा पता है, उससे ज़्यादा हमारी कदर कोई कर ही नहीं सकता। हमें तो लोग वो देंगे ना जो हम करते हैं, उसको लोग मेंशन करेंगे ना जो हम करते हैं, बाज़ दफ़ा अल्लाह हमारा वो भी मेंशन करेगा जो हम नहीं करते। इसलिए कि वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सिर्फ ज़रूरत उस बात की है उस खिलाड़ी पे नज़रें लगाएं जो खेल रहा होता है। आप देखें कि जो कमेंट्री कर रहे हैं वो मुसलसल नहीं बोल सकते, थक जाते हैं बोल के वो। इस तरह लोग भी हम पे कमेंट्स दे के थक चुके हैं, और कभी कभी फिर दिल का भड़ास निकलती है, फिर बोल पड़ते, कोई बात नहीं, कभी कोई खिलाड़ी अपनी कमेंट्री खुद सुनता है? वो तो बाद में सुनेगा ना। तो फर्स्ट थिंग लिखिए अब अपने लिए अमल की बातें, कि लोग जो कमेंट्रियाँ कर रहे हैं ना आपके हालात पे, उससे बेनियाज होते जाएं। खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा गोल क्या? खेलना। जो बैठे खेल देख रहे थे वो बीच में जाएंगे ना, कहीं बर्गर खा रहे हैं, चलो 7 अप ले आए, कोक ले आए, बातें कर लें, कुछ कर लें। खिलाड़ी की नज़र किस पे होती है? खेल पे होती है, वो आगे देखता है। हम अपनी धुन में मगन, वो कहते हैं ना कि अपनी धुन में मगन, बस अल्लाह की तरफ चल पड़ो। आपकी नज़र अपने काम पे हो, मैं कहती हूँ सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और आपको उस काम का एक रत्ती फायदा ना दिखे ना, तो आप चुप करके मस्कीन बन के रब को बता दें कि अल्लाह उलाई का यो सारे उन फिल खैरात में कोशिश की थी, कोई बात नहीं, अगर दुनिया वालों को फायदा नहीं हुआ, उम्मीद है कि तू हमारे उजर को कबूल करेगा। इसलिए कि वलदई ना किताब यंतिकु बिल हक, और हमारे पास एक किताब है जो सच बोलती है। कौन सी किताब है ये? ये नामे आमाल की किताब है। कुल इंसान नलजम ना होता इरफी नकी व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामती किताब यलक़ाहु मंशूरा। तुम्हारा नामे आमाल कल क़ियामत के दिन सच बोलेगा। वहुम ला युज़लमून, और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। हमें पता है कि तुमने अपनी कोशिश की, हमें पता है तुमने एफर्ट डाली, तुमने मुश्किलात सही, तुम कुर्बानियां देने को तैयार थे, नहीं नतीजा निकला, नहीं तो ना सही। देखिए कोई बंदा 10 दफ़ा कोशिश करता है, 10 तीलियां ज़ाया करता है, नहीं जलती आग, नहीं काम किया माचिस ने, क्या उसकी वो कोशिश बेकार हो गई? अगर उसने किसी अच्छे काम के लिए वो आग जलानी थी, भाई नहीं हुआ, मैं क्या करूं? यकीन करें ये सोच एक सच्चे दाईये दीन को मुतमईन कर देती है, वरना ये काम बड़ा मुश्किल काम है। हर लम्हे आप स्ट्रेस रहें, आप हंस नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, जितना बड़ा आप अपने ऊपर जिम्मा लेने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको मुतमईन और मसरूर कर देती है कि वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअ, नहीं तो ना से भी जाओ, फिर जाओ जिधर जाओ। कभी आप किसी सफर पे जाते हुए शख्स को देखा करें, बस अगर आप में से किसी ने अगले हफ्ते पाकिस्तान जाना है ना, खुदा न खास्ता, और मैं दुआ दूंगी कि आप में से कोई किसी मजबूरी के बगैर अब अगले दिनों में कभी भी पाकिस्तान ना जाए या कहीं ना जाए, अगर आप वाकई अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान समझते हैं तो। लेकिन बिलफर्ज किसी ने एक हफ्ता पहले जाना होता है ना, मैंने देखा है कि लोग घर की सफाइयों से बेनियाज हो जाते हैं, करना फिर खुद ही पीछे से। माएँ हर वक्त लगी होती ना, ये साफ करना है, वो करना है, जब कहीं जाना होता है ना आपकी नज़रें उधर लग जाती हैं। आखिरी मोमेंट में देखा करें एयरपोर्ट पे जाने के लिए, सारा घर अब खुद फैला के जाते हैं, कर लेंगे खुद ही साफ, मेरा ना वक्त कम, मुझे जाना है। जिसकी नज़रें आगे लगी हुई है ना, वो कहेगा हो गया काम तो हो गया, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने पूरा किया है, अब अल्लाह जाने और ये जाने, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस दुनिया को अपना घर समझते हैं ना, तो हम एक एक कोना झाड़ रहे होते हैं, एक एक बात पर रोते हैं, गम खाते हैं, ये क्यों खर्च किया, ये क्यों लगा दिया, ये क्या करना था, इधर क्यों गए थे, उधर क्यों गए थे। नहीं, अल्लाह कहता है वो सच वाली किताब बोलेगी कल तुम्हारे आगे। कितनी दफ़ा हमने एक दिन में अपनी उस किताब को बोलता हुआ महसूस किया? बोलती है ये किताब, वल्लाह ही बोलती है आपके ज़मीर की सूरत में। जो लफ्ज़ आप बोलते हैं ना, ये दिन में कई बार आपको बोल बोल के बताते हैं कि आज ये बता के आए हो, आज ये बता के आए हो, और आज ये सुन के आए हो, और आज ये दावा करके आए हो, और आज इस बात की कमिटमेंट करके आए हो।